Om Shivaya Nama. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dashashloki, presented by Swami Sri Vishnu Vallabhanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
वो इसलिए नहीं मनाते कि जन्म लेना अच्छी बात नहीं है. जन्म लिया है कोई हमारे पाप कर्म होंगे तब जन्म लेना पड़ा. और निर्वाण महोत्सव इसलिए मनाते हैं कि भगवान की कृपा से जीवन भर वेदांत का श्रवण हुआ, अध्ययन हुआ, तो आज भगवत कृपा से वो दिन मिला जो हम अपने स्वरूप को प्राप्त हुए. इस खुशी में निर्वाण महोत्सव तो बड़े धूमधाम से मनाते हैं, जन्मोत्सव कोई नहीं मनाते. ये प्राचीन पद्धति है, पुराने महात्मों की बात बता रहे हैं. तो बात चल रही है कि जिस संसार रूपी महाव्याधि को हम प्राप्त हुए उसी में कृतकृत्यता और तृप्त तृप्यता की जब बात आती है तो कुछ भी करना शेष रह जाए वह व्यक्ति कृतकृत्य नहीं हो सकता. बोलते रहे कृतकृत्य हो गए, लेकिन कैसे होंगे कृतकृत्य? कृतम कृत्यम ये न स कृतकृत्य, ऐसा अर्थ निकलता है. इसकी व्युत्पत्ति करेंगे तो क्या बोलना है? कृतम कृत्यम ये न सह कृतकृत्य. कृतम कर लिया है, क्या? कृत्य करने योग्य. किसने? ये न, जिसके द्वारा करने योग्य कार्य कर लिया गया है वह व्यक्ति क्या हो गया? कृतकृत्य हो गया. अब हम लोग भगवान कह रहे हैं कि नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन. अर्जुन को सावधान कर रहे हैं. गीता में आप देखिए, पूरे गीता को आप पढ़ेंगे, यदि गीता का ठीक से अध्ययन किया जाए, लोकमान्य तिलक जी जेल में रह करके भी गीता के बारे में कर्मयोग रहस्य लिखते हैं. कर्मयोग का मतलब क्या है? योगः कर्मसु कौशलम. ऐसा कर्म किया जाए, कर्म अपने आप में खराब नहीं होता. कर्म तो एक बिजली की तरह है, बिजली खराब नहीं होती. यदि उस बिजली को तार में नियंत्रित करके यदि हम अपने सुख सुविधा का साधन बनाए तो एयर कंडीशन चलाओ, लाइट जलाओ, पंखे चलाओ, और यदि तार में नियंत्रित किए बिना सीधे बिजली को पकड़ने जाए तो करंट लगेगा और मृत्यु के कारण बन जाएगा. ठीक यही कर्मों का भी हिसाब है. ऐसे कर्मों का निवेश किया जाए कि वह हमारे मुक्ति के साधन बन सकते हैं, और नहीं तो फिर कर्म तो है ही, जब जब कर्म करेंगे कर्तृत्व भाव दृढ़ होगा. तो भगवान ने अर्जुन को सावधान करते हुए क्या कहा कि अर्जुन, जिन लोगों को तुम मारने की बात कर रहे हो, तुम भला इनको क्या मार सकते हो? तुम्हारे अंदर क्या ऐसी सामर्थ्य है? अर्जुन को अपने सामर्थ्य का पता कब चला? जब भीलों ने लूट लिया, और उस समय भगवान के प्रभाव का अर्जुन को पता चला कि आज तक हमने जो कुछ भी काम किया सब उनकी सत्ता में, उनकी कृपा से. घर में जब माता पिता का साया उठ जाए तब बच्चों को याद आता है कि उनका रहना हमारे लिए कितना अच्छा था. रहते हुए तो हम उसका, अर्जुन को तभी तो सब भाव आता है ना कि सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, जो नहीं बोलना चाहिए था वो भी बोला. और भगवान तो क्या थे, माता पिता के समान थे. माता पिता अपने बच्चे कितना भी अपराध करे फिर भी कोई बात नहीं, माफ कर देते हैं. अर्जुन को ये सारा प्रभाव तब पता चला जब भगवान के सन्निधि नहीं थी और एक सामान्य भीलों के द्वारा लूट लिए गए. आज वही अर्जुन है, वही बाण है जो अर्जुन भगवान शंकर से मुकाबला कर सकते हैं. जिस अर्जुन के नाम सुनकर के कर्ण आदि भी एक बार डर जाते थे, जो अर्जुन विराट के वहां रहते हुए दुर्योधन पक्ष के बड़े बड़े धनुर्धारियों को पराजित कर देते थे, आज वही अर्जुन एक सामान्य भीलों के द्वारा लूट लिए जाते, स्त्रियों की रक्षा नहीं कर पाते. तब पता चलता है कि आज तक जो कुछ भी हुआ उसकी सत्ता में हुआ. हम लोगों का भी यही हाल है, जो भी हम कथा पढ़ते हैं सुनते हैं ना, अपने जीवन से जोड़ के देखना चाहिए कि उसकी सत्ता में आज हम पानी भी पी रहे हैं, शरीर में लग रहा है, जो दवाई खा रहे हैं रोग ठीक हो जाता है। एक ऐसा समय आएगा यही दवाई होगी, वही डॉक्टर होंगे, कुछ भी काम नहीं करेगा। और जब तक वो दवाई काम करे, समझ लीजिए हमारा अभी प्रारब्ध तेज है। प्रारब्ध जब प्रबल होता है तो व्यक्ति मिट्टी को हाथ लगाता है, वो भी सोना बन जाता है, और जब समय खराब आता है तो सोना भी मिट्टी होने लगता है। और ये तो सबका अनुभव है, सब देखती हैं क्या हो रहा है दुनिया में। तो कृतम कृत्यम ये न स कृत कृत्य, भगवान कह रहे नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन ना अनवाप्तम अवाप्तव्यम, न मेरे लिए कोई अनवाप्त है अर्थात मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ ऐसा नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, मैंने सब कुछ पहले से प्राप्त कर रखा है। अनवाप्त का मतलब होता है कि जिसको अभी कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, भगवान के पास क्या है सारी चीजें। और अवाप्तव्यम ऐसा भी नहीं कि कुछ प्राप्त करना बाकी भी रह गया हो, ऐसी कोई चीज नहीं जो मुझे प्राप्त नहीं, और ऐसी कोई चीज नहीं जो मुझे प्राप्त करना अभी बाकी रह गया, सब कुछ है। नान अवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च, यही है ना, क्या है वर्त एव च कर्मणि, फिर भी हमें कुछ करना है। तुम इस युद्ध के कर्ता अपने को मत मानो, इनको तुम नहीं मार सकते, तुम्हें क्या करना है तो निमित्त मात्रम भवसभ्य साचिन। आज हम जिसके माता पिता बनकर के जिस संतान का उपकार कर रहे हैं, वह उसके लिए हम निमित्त मात्र हैं। यदि ये भाव रखेंगे तो उस बच्चे से आपको सुख मिले चाहे दुख मिले कुछ भी अपने चित्त पर नहीं आएगा, क्योंकि हमने अपने को निमित्त माना। जब किसी से कहते ना आपने बड़ा अच्छा काम किया, तो बोलते हाँ जी हम कौन होते करने वाले, वो तो भगवान ने कराए, तो हम उनको बोल देते यही भाव रखना। क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग हैं ना जिसको हम पूछते हैं, प्रायः देखो असफलता के सब विरोधी हैं और सफलता के सब रिश्तेदार हैं। हाँ क्या है, असफलता के सब दुश्मन हैं, विरोधी हैं और सफलता के रिश्तेदार हैं। यदि आपका जीवन सफल है, कमा लिए, पैसे हैं, जो नहीं पहचानते वो भी आपके साथ रिश्तेदारी बनाने की कोशिश करते हैं, और यदि अपने पास कुछ भी नहीं है तो रिश्तेदार भी अपना कहने से मुकरते हैं, मना कर देते हैं, हम नहीं जानते उनको, डरते हैं कि कहीं कुछ देना न पड़ जाए, क्या करना पड़ेगा उसके लिए पता नहीं। संसार का जो स्वभाव है वो तो देखो आप। एक कोई सेठ जी थे, नगर में घूमने के लिए निकलते थे जब, तो जो भी देखे, उनका नाम था, किसी का नाम हो बुरा मत मानना, बोले नथुलाल जी नमस्कार। हाँ नथुलाल जी नमस्कार, वो देखे तो वो भी ज्यादा किसी को महत्व न देवे, कोई जब नमस्कार बोले तो बोले अच्छा अच्छा, सिर हिला के बोल दे, आप धीरे से बोले कि घर जाकर के कह दूंगा, जिस जो भी मिले नथुलाल जी नमस्कार घर जाके कह दूंगा। उसके मुंह से जब ये निकले घर जाकर के कह दूंगा, तो किसी को जिज्ञासा हो गई कि क्या बोलते, घर जाकर के क्या कहेंगे, किसको कहेंगे। तो कहा आप जो ये अंतिम में जोड़ते हो कि घर जाकर के कह दूंगा, वो क्या है। बोले वो घर में जब जाऊंगा तिजोरी खोलूंगा, और तिजोरी में जो माल पड़ा है ना उसको जाकर के बता दूंगा कि आपको लोगों ने नमस्कार किया है। मुझे कोई नमस्कार नहीं करते, क्योंकि जब तक मेरे पास नहीं था तब तो ऐ नथू इधर आना, ऐ नथू तू किधर जा रहा है। ये तो वही बात है, परसु परसा परशुराम जी, क्या नाम था, परसु परसा परशुराम, नाम तो परशुराम ही था उसका। ए परसु इधर आना, जब थोड़ा ठीक ठाक होने लगा परसा इधर आना, और बाद में तो परशुराम जी आप कैसे हैं? बाप बड़ा न भैया। वाह भाई क्या बात है, कितने भी वेदांत पढ़ो उपनिषद पढ़ो घुमा फिरा करके बात वहीं आती, यही माया है। कुंभ मेला होगा ये चाहिए, टका धर्म टका कर्म टकैव परमम सुखम, यस्य पार्श्वे टका नास्ति हाटके टक टकायते। टका धर्म, पैसा है हमें यज्ञ करने की इच्छा हो गई हो जाएगा, सब व्यवस्था होगी, जो काम नहीं करने वाले उससे भी आप काम करवा लोगे। टका धर्म टका कर्म टकैव परमम सुखम, यस्य पार्श्वे टका नास्ति, जिसके पास टका नहीं है, हाटके हाटक बोलते संस्कृत में बाजार को, बाजार में जाओ और जेब में पैसा न हो तो टक टकायते, देखते रहो कुछ ले नहीं सकते, इच्छा हो रही लेकिन जेब में कुछ है ही नहीं, करेंगे क्या? और जेब खाली हो और उसको कहो जाओ प्रेमपुरी में थोड़े दस श्लोकी सुन करके आओ, बोले यार वहां तो सब बैठे हुए मजबूत लोग हैं, हम कमजोर को कौन पूछेगा, वहां हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, अभी तो हमें कमाना है, हमारे पास न घर है न गाड़ी है न खाने की व्यवस्था है, वो बाबा जी क्या दस श्लोकी सुना करके हमको रोटी दे देंगे? ये जीवन संबंधी समस्या जब रहती है ना, और इससे ऊपर उठने की बात हम ये नहीं कहते कि यही साधन है, लेकिन एक मानसिकता है मनुष्य के, जो आवश्यक चीजें हैं ना वो यदि न हो तो चित्त विक्षिप्त होता है, मन नहीं लगता। और जहां साधन संपन्न लोग हैं, मान लो घर में भगवान का दिया हुआ सब कुछ हो, लेकिन बेटा अपमान करे, सास बहू की न बने, बाप बेटे के न बने, तब भी ये दस श्लोकी समझ में नहीं आएगी, सुनने का मौका ही नहीं मिलेगा, आएंगे नहीं यहां तक, और आ भी गए और उसमें कोई ऐसा दृष्टांत आ गया, रामायण की कथा चलती है, क्या भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी थे जिन्होंने अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया और राम जी के पीछे पीछे गए। अब कथा सुनने वाला व्यक्ति जब सुनता है ना तो पैर हिलाते हुए सोचता है कि मेरा छोटा भाई भी लक्ष्मण जैसा होता तो कितना अच्छा होता, और छोटा भाई कथा सुनता है तो बोलते मेरा भाई भी राम जैसा होता तो कितना अच्छा होता। बस आप सपना देख सकते हो, वास्तविक तौर पर तो बात कुछ और ही है। हर लोग मन की पकौड़ी खाते हैं, बैठे बैठे मूंग भी भिगा दिया, मिक्सचर में पीस भी लिया, कड़ाही भी चढ़ गई, तेल भी उबल गया, पकौड़ी पक भी गए, खा भी लिया, इसको क्या बोलते हैं? मन की मन की पकौड़ी मत खाना, यहां तो सच्चाई से रूबरू होना है। जो ये चीजें दिखाई दे रही है, चाहे कोई अपने कर्म फल के रूप में दुखी है अथवा कोई सुखी है, सुख और दुख मन की कल्पना है, प्रारब्ध के अनुसार ये सबको मिलता ही है, लेकिन ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। एक न एक दिन ये सब समाप्त हो जाएगा। यदि कोई चीज रहनी है तो हमारा ज्ञान है, जिसके साथ हमें अपना वास्ता जोड़ना चाहिए, संबंध बनाना चाहिए। इसलिए अर्जुन को कहा भगवान ने कि मेरे लिए कुछ भी नहीं करने योग्य होने पर भी जो मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपने मन में कभी कर्ता का भाव नहीं लाता। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न तो किसी चीज का अपने को कर्ता मानते, न उनके लिए कोई कर्म है। तो गीता पढ़ने पर ये निचोड़ निकलता है कि अर्जुन ने जब तक अपने को युद्ध का कर्ता माना तो इसलिए युद्ध करने का निषेध भी किया। केवल युद्ध करना ही कर्तापना नहीं है। जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं कुछ नहीं करता, ये भी एक कर्तापना है। उसके लिए चौथे अध्याय में आया ना, कर्मण्य कर्म यह पश्चित, कर्म में अकर्म को देखो और अकर्म में कर्म को देखो, ये वही बात हो जाती है। जो लोग करते हुए भी अपने को कर्ता नहीं मानते, एक महापुरुष अपना अनुभव सुना रहे थे, कहीं कुंभ मेले की बात है शायद, तो वो चले गए सवेरे कहीं घूमने के लिए, और तब तक कुछ भगत जो थे सोचे गुरुजी के फोटो के थोड़े पूजा कर लें, ठंडी का टाइम, वो घूम के आए पगड़ी सब बांधे हुए शॉल ओढ़े हुए, भीड़ में वो भी घुस गए और सब लोग पूजा करने में आरती उतारने में लगे थे, तो किसी ने कहा एक महात्मा है इनको भी आरती पकड़ा दो, वो भी अपने फोटो के आरती उतार रहे, ये नहीं बताया कि मैं ही हूं। ये भी एक आनंद है, सब कुछ मालूम होते हुए भी मैं इस कर्म को करता हूं मुझे इसका फल मिले, ये जो व्यक्ति इच्छा रखेगा उसके दुखों का अंबार कभी समाप्त होने वाला नहीं है। हम लोग कुछ भी करते हैं ना, या तो चाहते मेरा नाम हो जाए, या लोगों को पता लगे कि मैंने किया है। अच्छा, जब अपने से कोई काम बुरा हो जाता है तो सोचते हैं किसी के दूसरे का नाम लग जाए, भगवान बचा ले कि अपना नाम ना आए। जैसे वो आप लोग नहीं सुनते दृष्टांत में, गौतम ऋषि से गाय की हत्या हो गई और नाम लगा दिया किसका, इंद्र का। और यदि अकर्ता का भाव, काम तो पूरा ठीक ठीक करना है लेकिन कहीं पर मेरा नाम आवे, इस कर्म का फल मुझे ही मिले, ऐसी इच्छा यदि रखेंगे तो अंतःकरण अशुद्ध होगा और अशुद्ध अंतःकरण में आनंद का अनुभव नहीं होता है। सत और चित्त की बात तो सबको समझ में आती है, लेकिन जब जब आनंद के अनुभव की बात करते हैं लोग, बोलते ये वेदांत सूखा शास्त्र है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या बोलते हैं, कहीं न कहीं इसके लिए हम स्वयं जिम्मेवार हैं कि हमारे चित्त में अशुद्धि है और इसलिए उस आनंद के अनुभव से हम वंचित रह जाते हैं। रमण महर्षि जी का नाम सुना है ना आप लोगों ने, रास्ते में जा रहे थे बड़ी मस्ती से, कुछ लोग उनके साथ भी थे, चले जा रहे एक जगह उनको एक को ऐसा पौधा दिखा, क्या आया मन में पता नहीं, और उसको तोड़ के छड़ी डंडा बनाने लगे, तो साथ में जो लोग थे ना वो सब बोले लाओ लाओ मैं कर देता हूं, मैं नहीं कोई मत छूना, सबको मना किया, अपने ही हाथ से काटा, अपने ही हाथ से छाटा, इतनी सुंदर छड़ी बनाई, सबको लगा कि इनको छड़ी से बड़ा प्रेम है, पूरे लगन के साथ बनाया, इतना प्रेम। रास्ते में चले जा रहे और आगे से कोई बकरी चराने वाला लड़का आ रहा था, और बकरी को हांकने के लिए उसके हाथ में डंडा था, नहीं उन्होंने अपना डंडा पकड़ा दिया, ले ये क्या है, बनाया स्वयं, छड़ी अच्छी भी थी, हम यदि इतने मेहनत से बनाए तो क्या चाहेंगे, ऐसे व्यक्ति को दो जो मेरे काम में आवे, चाहते कि नहीं चाहते। कोई भी एक व्यक्ति को गिलास पानी भी पिलाता है तो मन में कहीं न कहीं ये भाव आता है कि ये मुझे अच्छे नाम लेकर के याद करे, यही भाव जब आता है ना तो हम कृतकृत्यता और तृप्तता की जो बात की जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। लोक में आप छोटा सा भी उपकार करते हो किसी के प्रति और उसमें यदि कर्तृत्व के भाव ना आए तो समझ लीजिए हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। और अभी संसार के लोग दुखी इसलिए हैं, छोटे से छोटा काम हो बड़े से बड़ा काम हो मेरा नाम आना चाहिए, लोग मुझे पहचाने, और तृप्ति का अनुभव हो नहीं सकता, क्योंकि 10 लोगों में एक का काम करोगे 9 तो आपका नाम नहीं ही लेंगे, और यदि पूरे कर्तृत्व भाव का त्याग कर लोगे तो 9 ने नाम नहीं लिया तब भी आपकी प्रसन्नता वैसी ही है, और 1 ने नाम लिया भी तब भी आपकी प्रसन्नता में कोई कमी नहीं है। लेकिन 10 में से 1 का आपने काम किया है और 9 आपका नाम लेंगे नहीं, इससे हम लोग दुखी हो जाते हैं। भगवान विष्णु का जो नाम है ना, विष्णु सहस्र नाम में जहां आता है, अमानी मान दो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधिक, भगवान कैसे हैं, तो कहीं पर भी वो मान की अपेक्षा नहीं रखते कि लोग मुझे माने। और हम लोग कैसे हैं, यदि हम मान की अपेक्षा नहीं रखते हैं तो हम ये सोच लेते हैं कि जब हमें किसी का मान नहीं चाहिए तो हम उसका मान क्यों करें, ऐसा मन में एक भाव आता है, इसको बोलते हैं प्रतिकार की भावना। अपने को नहीं चाहिए तो हम उसके लिए क्यों करें। भगवान कितने ऊपर उठे हुए हैं, स्वयं तो अमानी हैं और अमानी होकर के सबको मान देते हैं। अमानी मानद, मानम ददाती इति मानद, स्वयं तो किसी से मान की अपेक्षा नहीं रखते लेकिन सबको मान देते हैं। और जब ऐसा होगा कोई तो क्या होगा, सबके लिए मान्य। एक ही जगह भगवान के तीनों नाम आया, अमानी मानदो मान्य। जो व्यक्ति अमानी होकर के दूसरे को मान देता है वह सबके लिए मान्य हो जाता है, उसको सर्वत्र सम्मान मिलता है। हम घर के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं और उसी समाज और घर में रह करके सब हमें माने, हमको अपना बड़ा समझे, कभी कोई प्रशंसा करे तो बड़ी खुशी भी होती है। ये सब तात्कालिक शांति तो मिलेगी लेकिन इसको निरतिशय आनंद नहीं कहा जा सकता, इससे हमें थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। और ये सब किसको लेकर के होता है सारा भाव, तो यहां पर सिद्धांत बिंदु में जो मूल जड़ है, सबसे जबरदस्त जड़ तो अज्ञान है, और अज्ञान के बाद जो जो अनर्थ परंपरा शुरू होती है, अनादित्वेन उत्पत्ति अभावात प्रकाशात्मना एव तज्ज्ञप्ति रूपत्वात्। अब यहां से जो क्रम शुरू हुआ ये जरा आप लोग सुनिए, इसका विचार हम कल करेंगे। तेन अज्ञानाध्यास विशिष्ट चैतन्य अहंकाराध्यास। जब अज्ञान विशिष्ट चेतन बनता है तो हम लोगों के अंदर कल जो बताया था कि बाहर के व्यापक चेतन परमात्मा और जब वो चिदाभास अंतःकरण में आता है तो दोनों के बीच में जो भेद पैदा करता है, परिच्छिन्न बना देता है, वो कौन है, सबका मन। और इसी मन से ज्ञान और अज्ञान का संबंध बनता है। मोटी भाषा में आप इसको याद रखना, जो अध्यास आदि की बात आती है ना, संसर्ग अध्यास, रूपा अध्यास, इतरे इतरा अध्यास, तादात्म्य अध्यास, सहज तादात्म्य अध्यास, भ्रमज तादात्म्य अध्यास, इतने अध्यासों का नाम गिनाया, अनगिनत। पूरे दुनिया में हम लोगों का व्यवहार चलता ही है सब अध्यास में, इसलिए एक मोटा मोटा नाम लिख दिया, व्यवहारो नाम भ्रांति ही। व्यवहार करना ही क्या है, भ्रांति है। अच्छा, यहां तो आप लोग हिम्मत कर लेते हो बोलने की, बाहर मत बोलना ऐसा। जितने भी ये व्यवहार है सब फॉर्मेलिटी है, कुछ भी नहीं है। आज आपने फोन किया, अगला खुश हो गया, अरे उसका फोन आ गया, एक हफ्ता फोन न करो क्या बात है, आजकल फोन ही नहीं आ रहा है। और यदि रोज फोन करो तो बोले इसका कोई काम नहीं है, क्या रोज फोन करता है, रोज फोन करो तो बोले कोई काम नहीं है, रोज फोन करता है, नहीं करो तो बड़ा बेकार आदमी है, फोन भी नहीं करता, एकदम भूल जाता है, इससे कैसे व्यवहार चलेगा। इसलिए व्यवहारो नाम भ्रांति, बस इसको तो उलटते रहते पलटते रहते हैं। घर का कितना भी प्रिय व्यक्ति जब चला जाए, दो दिन चार दिन दुख होता है, महीना भर याद करते हैं, साल दो साल में किस्से कहानी की तरह हो जाता है। और ऐसा नहीं कि हम अपने गए हुए व्यक्ति को भूल गए और हम जब जाएंगे तो हमको कोई नहीं भूलेंगे, हा? ऐसे भ्रम में मत रहना। तो ज्ञान और अज्ञान के बीच में जो संबंध जोड़ने वाला है, आत्मा और अनात्मा के बीच में, वो है मन। मन को ही ठीक करना पड़ेगा। मन कैसे ठीक होगा, एक छोटा सा उदाहरण दिया है, एक मिनट में ये बात समाप्त करते हैं। एकदम घोर अंधकार में कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए और उसके सामने टॉर्च जला करके और ऐसे नचाओ, घुमाओ पूरा, उसमें दोनों चीज दिखाई देगी, थोड़े अंधेरा भी दिखाई देगा, थोड़ा प्रकाश भी दिखाई देगा। मन जो है ना हम लोगों के अंदर टॉर्च की तरह नाच रहा है। कैसा नाच रहा है? टॉर्च की तरह, जिस गोल चक्कर घुमा के नाच रहा है। यदि ये मन 10 सेकंड के लिए भी टिक जाए, उस समय थोड़े से आत्मा की झलक मिलती है। 10 सेकंड के लिए रुक जाए तो, और जहां पर लंबा रुके वहां तो फिर कहना ही क्या। वो मन का 10 सेकंड टिकना कैसा है? लोहे के टुकड़े को जमीन के अंदर गाड़ दीजिए और साल भर तक आप मत देखो, फिर खोदने की कोशिश करो, वहां मिट्टी मिलेगी, लोहा नहीं मिलेगा। वो लोहा मिट्टी बन चुका है। और यदि रोज खोद खोद के देखते रहो, वो कभी मिट्टी बनने वाला नहीं है। जब ये मन पूरी तरह से उसमें डूब जाता है, जो ये समाधि और सुसुप्ति की बात आती है ना, ये सब आ रहा है, विचार होगा उसका, ज्ञाता ज्ञात पूर्वक कैसे उसके भान और अभान में स्थिति होती है। आप लोग बोलते हैं महाराज बहुत सुन लिया, कथा सुनते रहते हैं। अरे कथा सुनते सुनते समाधि लग जानी चाहिए, यहां मत सोना अभी। एक प्रश्न करते चलते फिरते लोगों से, आजकल अमन चैन है क्या? बोले अमन चैन है, इसका मतलब क्या होता है? जहां पर मन है वहां चैन नहीं है, जहां अमन है वहीं पर चैन है। अभी अमन चैन की कैसी प्राप्ति होगी? समय हो गया है, अभी इतने आप होमवर्क लेकर के जाओ कि अहम रूपी परिच्छेदक ने उस व्यापक परमात्मा से इस जीव रूपी जो उपाधि है इसके बीच में जो भेद डाला है, इसको मिटाने के लिए अहम को कैसे विगलित करना है, कैसे इसको मन में मिलाना है, मन को ही हटाना है, तब जाकर के जो तृप्त तृप्यता और कृत कृत्यता की बात सार्थक होगी। ये सब फिर विचार कल करते हैं। हरिओम।